जय गिरी वरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी, जय गिरिवर हरी। यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, इस्कॉन बिबड़ी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक से श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, शील प्रभुपा ट्रांसल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, निताय गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम अध्याय 3 स्कंद 3 अध्याय 23 देवहूति का शोक श्लोक क्रमांक 56। न इह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन अपि मृतः हि सः। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन अपि मृतो हि सः। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन अपि मृतो हि सः। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन अपि मृतो हि सः। जीवन अपि मृतो हि सः। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते तीर्थपद सेवाय
जीवन अपि मृतो हि सः।
जीवन अपि मृतो हि सः। माताजी कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। न नहीं इह यहाँ यत जो कर्म कार्य कर्माय धार्मिक जीवन की पूर्णता के लिए। न नहीं विरागाय विरक्ति के लिए कल्पते ले जाता है। न नहीं तीर्थपद श्री भगवान के चरण कमलों का सेवायै भक्तिमय सेवा के लिए जीवन जीवित रहकर आपे यद्यपि मृतः मरा हुआ ही निश्चय ही सह वह। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जिस पुरुष के कर्म से न तो उसके धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत ही मानना चाहिए। तात्पर्य देवहूति का कहना यह है कि वह अपने पति के इंद्र तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन व्यर्थ गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके वह व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य के करने से मनुष्य को धार्मिक जीवन मिल सके, और फिर धार्मिक जीवन से विरक्ति और विरक्ति से भक्ति योग प्राप्त हो सके, तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध हुआ। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिस कार्य के करने से मनुष्य को अंततः भक्ति योग प्राप्त नहीं होती, वह भौतिक जगत के में बंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थात कर्मान्त लोकोयम कर्म बंधन। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्त के पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तो उसे स्वयं को मृतक के तुल्य ही मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न हो सके वह व्यर्थ है। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतोपि सह। तो हम लोगों के जीवन के कार्य कर्म से धर्म, धर्म से वैराग्य और वैराग्य से भक्ति की उत्पत्ति, ये क्रमशः मानव जीवन के लिए सफलतापूर्वक मार्ग है। और इस भौतिक जगत के विभिन्न प्रपंचों से बचने के लिए शनै शनै हमें भगवान के वैष्णव भक्तों के संग में रहकर श्रवण कीर्तन इत्यादि की पद्धति के माध्यम से विरक्ति की उत्पत्ति होती है। और जब ऐसी नेहयत कर्म धर्माय, कर्म से धर्म, धर्म से वैराग्य, और तब जाकर वैराग्य से भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो चैतन्य चरितामृत के अंतलीला में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा का वर्णन आता है। कृपा गुणैर्य कुगृहांधकूपैर उद्धृत्य भंग्या रघुनाथ दासं न्यस्य स्वरूपे विददे अंतरंगं श्रीकृष्ण चैतन्यममुं प्रपद्ये। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अवलंबन करता हूँ, आश्रय ग्रहण करता हूँ, जिनकी कृपा से, कृपा गुणैर यह कुग्रहांध कूपै ही, जो इस भौतिक जगत के प्रपंच से, रज्जु से बच सके, महाप्रभु की कृपा रूपी रज्जु के द्वारा विशेष रूप से स्नेहबद्ध होकर वो उद्धृत्य भंग्या रघुनाथ दासम। उद्धृत्य भंग्या अर्थात जिनके हर प्रकार के भौतिक बंधन समाप्त हुए महाप्रभु की कृपा और महाप्रभु के विशेष हस्ताक्षेप से, ऐसे रघुनाथ दास जो कि न्यस्य स्वरूपे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरण कमलों में जिनको समर्पित किया गया, न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंगम, और वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंतरंग पार्षदों में एक बने, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कई अंतरंग पार्षदों के माध्यम से विभिन्न गुणों को प्रदर्शित किए, रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से वैराग्य का प्रदर्शन किए, और इस वैराग्य को उच्च कोटि के रस भक्ति या प्रयोजन ज्ञान को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बतलाया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो एक बहुत बड़े उद्योगपति पिता के पुत्र रहे, गोवर्धन मजुमदार, और उनके भाई का नाम था हिरण्य मजुमदार। हर वर्ष 20 लाख सोने की मुद्रा वो वहाँ पर जो सरकार थी उनको देने का उन्होंने उत्तरदायित्व संभाला। लेकिन उसके पहले एक दूसरा व्यक्ति था जो ये कार्य पहले करता था, तो वास्तव में उनके कंपटीशन में आकर ये वसूली का काम ये लोग करने लगे। तो वह पुराना व्यक्ति कुछ क्रोधित हो गया, अप्रसन्न हो गया, और उसने विचार किया कि हम देखते हैं ये लोग किस तरह वसूली कर रहे हैं। तो 20 लाख में से 15 लाख सरकार को देकर 5 लाख वो लोग रखने के लिए अधिकृत थे, लेकिन गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार 20 लाख वसूली करके 15 लाख देने के बदले सरकार को केवल 12 लाख दे रहे थे और 8 लाख रख रहे थे, 3 लाख एक्स्ट्रा वो ले रहे थे। तो इसने जो देख लिया और सरकार को जाकर उन्होंने कंप्लेंट कर दिया, और तब वहाँ के चौधरी आए, और तब गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार को मालूम पड़ा कि हमारे ऊपर जांच पड़ताल होकर गिरफ्तार हो जाएंगे, है कि नहीं, पैसे के घोटाले में। तो जैसे सब लोग करते हैं क्या किया, फरार हो गए। तो दोनों फरार हो गए। तो कई बातें बड़ी पुरानी हैं, कोई नई नहीं है, लेकिन अमेरिका लंदन वगैरह नहीं गए, वहीं पे बंगाल में कहीं पर किसी गांव में जाके छुप गए, जो कोई भी हो तो अफसर ढूंढते हुए आए, रघुनाथ दास को मिले, बोले कहाँ है भैया तुम्हारे पिताजी और उनके भाई, बोले वो तो गायब ने, क्या करें। तो फिर रघुनाथ दास को गिरफ्तार करके वो लेके गए और उनका इंटरोगेशन करना आरंभ किया। विशेषे कायस्थ बुद्धे अंतरे कॉरिडर, मुखे तर्जे गर्जे मारिते सभय अंतर। तो अब ये ऑफिसर भी जानते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ थे, और इसलिए कायस्थ होने के कारण उनके ऊपर बहुत ज्यादा भी वो आक्रमण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समाज के लोगों से सरकारी अफसर भी डरा करते थे। कायस्थ बुद्धि अंतरे करे डर, इसलिए आंतरिक रूप से उनको भय था। मुखे तर्जे गर्जे, मुख से वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन मारिते सभय अंतर, हाथ नहीं उठाया। और तब रघुनाथ दास गोस्वामी उनको कहने लगे, उस समय रघुनाथ दास, कि देखिए आपका और हमारे पिताजी और हमारे जो ताऊ जी के साथ तो बहुत पुराना संबंध है, एक ही परिवार के सदस्य के भांति हैं, वो तो आपके छोटे भाई जैसे हुए, तो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कभी-कभी मतभेद होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, धन को लेके, संपत्ति को लेके, सत्ता को लेके कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसलिए आप इसको इतना विशेष महत्व मत दीजिए, आपके हृदय में वास्तव में उनके लिए भी बड़ा प्रेम है और उनका भी आपके लिए बड़ा प्रेम है, इन छोटी मोटी बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो, पालक होई या पालिए रे मारिते न युयाई, तुमी सर्व शास्त्र जान जिंदा पीर प्राय। आप भी जानते हो कि जब कोई व्यक्ति किसी का आश्रय लेता है, पालक होई या पालिए रे ताड़िते न युयाई, छोटे बच्चे को कभी माता पिता सुधारने के लिए इतना ताड़न नहीं करेंगे जितना समझाएंगे, तो इसलिए तुम ही सर्व शास्त्र जान, आप तो सभी शास्त्र को जानते हैं, आप तो जिंदा पीर हो, आप तो चलते फिरते पीर हो, इतने बड़े संत हो, तो आपको इस प्रकार की प्रतिकार की भावना शोभा नहीं देती, अवश्य आप उनको समझा सकते हो और ये मामला जो है सुलझ सकता है। तो इसको सुनते ही रघुनाथ दास के मुख को देखकर और उनके वाणी को सुनकर और उनके हाव भाव से प्रभावित होकर वो जो अफसर है, एत शुनि सेमले छेर मन आर्द्र होइला, दाढ़ी वही अश्रु पड़े कांदिते लागिला। तो उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होकर उनके दाढ़ी के अंदर से टपकने लगी और उनका मन बिल्कुल प्रभावित हो उठा और रो रो कर कहने लगे कि अरे मैंने कहा कहा कि वो न लें, वो लें लेकिन मेरे साथ भी बांटे। तो ये बात को वो नहीं समझ रहे हैं और पूरा 8 लाख अपने पास रख लेते हैं, तो फिर कैसे चलेगा, थोड़ा हमको भी तो दें। तो रघुनाथ दास ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपका और उनका हम समझौता कराते हैं, और तत्पश्चात दोनों के बीच में रघुनाथ दास जी ने एक मीटिंग करवाया और सब कुछ सुलझा दिया। तो ये कथा आती है इस बात को प्रदर्शित करने कि रघुनाथ दास के अंदर भौतिक कार्यों को संपन्न करने के लिए क्षमता अच्छी खासी थी, अर्थात जो सामान्य दैनिक व्यवसाय के जटिल परिस्थितियां थी उसको सुलझा सकते थे। ये नहीं सोचना चाहिए कि वैराग्य धारण किया क्योंकि बिजनेस के विषय में विचार करके घबरा गए और सोचे कि ये क्या होगा, हमसे नहीं होने वाला। एक बहुत बड़े अरबपति के पुत्र मेरे को एक बार मिले थे और वो मुझे बोल रहे थे कि हमारे पिताजी का तो हजारों हजारों करोड़ का संपत्ति है और वो मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं उस जो बिजनेस एम्पायर को आगे चलाऊं। मैंने कहा बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका, क्योंकि विश्व में लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको ऐसा अवसर मिले और कई लोग तो आपके पिता के पुत्र बनने के लिए रेडी है। तो वो बोले नहीं नहीं लेकिन मैंने अपने पिताजी को पूछा ये सब इतना बड़ा बिजनेस किसके लिए खड़ा किया, वो बोलते हैं आपके लिए। मैंने कहा मेरे को थोड़ी पूछा आपने, इतने हजारों करोड़ का आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, मेरे अंदर इतना कुछ उत्साह भी नहीं है और क्षमता भी नहीं है, मुझसे नहीं होने वाला। तो मैं उनको बताता हूँ कि मुझे अपने कंपनी में 10,000 रुपये की नौकरी लेकर सिंपल एक नौकरी के रूप में रख दो। ये सत्य घटना बता रहा हूँ। तो कई बार बहुत बड़े उद्योगपति परिवार में भी अगर कोई जन्म ले, बहुत बड़े व्यवसायी का कोई पुत्र का गारंटी नहीं कि स्वाभाविक रूप से उसके अंदर भी उसी प्रकार की क्षमता, उत्साह, जुनून रहेगा ये सब कार्य करने के लिए। तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार तो बिल्कुल जबरदस्त बिजनेसमैन थे, लेकिन रघुनाथ दास थोड़ा ज़्यादा प्रसाद खाने के बाद रजोगुण निकल गया शायद, और उसकी जो क्षमता नहीं रही, केवल बिजनेस का नाम सुन के घबरा जाता था क्योंकि सरकार, सरकारी ऑफिसर और ये वो इतने सारे सब पहलू संभालने पड़ते हैं, शायद घबरा गया इसलिए भाग के महाप्रभु के पास चला गया, ऐसा भी लोग आरोपित कर सकते हैं। तो उस शंका का समाधान करने के लिए पहले बताया कि पिता और पिता के भाई फरार हो गए थे, उनको दुर्गति से बचाया इन्होंने यौवन संपन्न अवस्था में। तो इसलिए भीष्मदेव कहते हैं आत्मविश्वास के लिए 6 महत्वपूर्ण मार्ग क्या हैं, 6 टिप्स टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं यू कैन डेवलप फ्रीडम फ्रॉम एंगर बाय फॉरगिवनेस, क्रोध से मुक्ति क्षमा के माध्यम से। दूसरा, यू कैन बिकम फ्री फ्रॉम अनलॉफुल डिजायर बाय नॉट मेकिंग प्लान्स, अवैध जो इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं जब हम योजना न बनाए। अब योजना का अर्थ यहां पर है कि भौतिक इंद्र तृप्ति की योजना। तीसरा, यू कैन डेवलप स्पिरिचुअल कल्चर बाय कॉन्क्वरिंग स्लीप, आध्यात्मिक आपके अंदर संस्कार कब बढ़ेंगे, जब निद्रा के ऊपर हम लोगों का संयम बने। वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय डिजीज बाय रेगुलेटेड डाइट, बीमारियों से व्याधियों से मुक्त होने के लिए आहार के ऊपर नियंत्रण हो। मनी कैन बी सेव्ड बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल एसोसिएशन, धन को अगर संचय करना हो तो असत्संग का त्याग करके हम धन संचय कर सकते हैं। बाय प्रोवेस वन कैन अवॉइड फियरफुलनेस, शक्ति और सामर्थ्य के प्रदर्शन से हम भय से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पर रघुनाथ दास जी अपने पिता और उनके भाई के लिए उस ऑफिसर लोगों के साथ, सरकारी अफसर लोगों के साथ विविध प्रकार के हस्ताक्षेप करके पुनः शांति स्थापित करते हैं और फिर वो लोग अपने घर पर लौटकर अपने व्यवसाय को संभालने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रघुनाथ दास के पास सत्ता, शक्ति और प्रचुर मात्रा में धन भोग करने की क्षमता थी। तो जब जितना जिस व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में भोग के लिए साधन हो, उतना वह व्यक्ति विषयों के बीच आविष्ट हो जाता है, उतना ही उस व्यक्ति को इंद्र तृप्ति में नियंत्रण करने में कठिनाई होती है। तो इसलिए विदुर जी कहते हैं कि विषयों को और विषय वस्तुओं को दोष मत दो, अपने आत्मनियंत्रण को बढ़ाओ। डू नॉट ब्लेम सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंप्रूव योर सेंस कंट्रोल। तो इसलिए विदुर जी कहते हैं एक श्लोक में चार वो टिप्स देते हैं कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल को कैसे बढ़ा सको, अपने आत्म संयम को, नियंत्रण को कैसे बढ़ा सको। धृत्या शिष्णोदरम रक्षेत पाणिपादम च चक्षुषा चक्षुष श्रोत्रे च मनसा मनोवाचम च कर्मणा। विदुर नीति में, महाभारत में विदुर जी कहते हैं कि यू कैन कंट्रोल शिष्णोदरम रक्षेत लस्ट एंड हंगर, जो क्रोध, जो भूख, क्षुधा और काम, काम वासना और भूख से कैसे हम बच सकते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, धृत्या धैर्य को बढ़ाकर, पेशेंस। वन कैन कंट्रोल लस्ट एंड हंगर थ्रू पेशेंस, है कि नहीं? और हम लोग सभी को जो है इस बात का अनुभव है, और आज तो खैर द्वादशी है तो शायद इसका भी प्रभाव तगड़ा रहेगा। राधानाथ महाराज लेक्चर दे रहे थे फोगला आश्रम में बहुत वर्ष पहले, 2011 या कब, और लेक्चर उनका चल रहा था, फर्स्ट डे था यात्रा का, 6 गोस्वामी टेम्पल सब लोग जाने वाले थे। प्लान था कि करीब 9:30 से 11:30 तक लेक्चर चलेगा, फिर प्रसाद होगा जो है, हाँ, और प्रसाद के बाद थोड़ा रेस्ट लेकर सब लोग फिर 6 गोस्वामी मंदिर में, सब लोग 3:30 बजे से जाना शुरू करेंगे, जिससे कि 4 बजे के दर्शन में सब लोग दर्शन ले सके। तो योजना बनी थी इस तरह। 9:30 बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ और लगभग 12 बजे हम लोग प्रसादम का काउंटर पीछे लगाने लगे फोगला आश्रम का स्टेज के पास। अब पीछे बैठे जो लोग थे उनका ध्यान आकर्षित हो गया कि कुछ हलचल चल रही है। पीछे मुड़ के देखा उन्होंने कि टेबल लग रहा है, और टेबल लगते हुए देख के सब समझ गए क्यों लग रहा है। तो एक व्यक्ति उठा और जहां से लाइन शुरू होती है वहां जाके ऐसे खड़ा हो गया, कहीं और देख रहा है, खड़ा हुआ है प्रसाद के लाइन में, लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं अनासक्त यूं ही खड़ा हूं। तो वैसे ही उसको देखकर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, वो भी उसके पीछे जाके खड़ा होकर दूसरी तरफ मुड़ के खड़ा हो गया, जैसा कि लगे नहीं कि वो लाइन में खड़े, दो लोग ऐसे ही खड़े हैं हवा खाते हुए। उनको देखकर तीसरा आदमी खड़ा हुआ, चौथा आदमी खड़ा हुआ, इसके लिए तो निमंत्रण लगता नहीं है। तो धीरे धीरे देखा जाए 100-125 लोग यूं खड़े हो गए, और हर एक व्यक्ति इस तरह खड़ा हुआ है कि हम किसी और के लिए खड़े हैं, लेकिन खड़े थे प्रसाद के लाइन में। तो लगभग 12:15-12:20 तक हम लोग का काउंटर सब लग गया, और जब आइटम हमने बिठाना स्टार्ट किया तो उसका भी सुगंध आता है, उसके भी प्रभाव से कई लोग का ध्यान जो है भंग हो गया। तो 12:30 बजे सबको लगा भी महाराज ने कुछ तो पॉइंट बोला और सब लोग की जोरदार तालियां बजी और सबको लगा अभी सब समाप्ति होने वाला है। तब महाराज ने पूछा, शैल आई कंटिन्यू? आप सबके पेट में चूहे तो कूद रहे थे, लेकिन शैल आई कंटिन्यू का तो सबके पास एक ही आंसर है, क्या है? मैं नहीं पूछूंगा। हरी बोल बोला तो सब लोग ने तो हरी बोल बोल दिया, लेकिन सबसे मजे की बात थी कि ये जो 100-125 लोग खड़े थे वो लोग भी खड़े होकर हरी बोल बोल रहे, जो कि स्पष्ट था कि वो लोग प्रतीक्षा कर रहे कब लेक्चर खत्म होगा। वो बेचारे उदास होकर वो भी हरी बोल कर रहे हैं कि अरे यार अपना सीट भी गया और खड़े भी हैं और वापस कौन बैठेगा। सबको लग रहा है कि अभी हो सकता है 10 मिनट, क्योंकि जब लेक्चर चलता है तो महाराज पहले थोड़ी एडवांस में बताते हैं कि इतने बजे मैं बंद करूंगा, आशा अमर है। सबको लग रहा है कि अब हो सकता है और 15 मिनट, शैल आई कंटिन्यू का 15 मिनट चलेगा। अब सामने वाला जो फ्रंट में खड़ा है उसको लग रहा है मैं फर्स्ट स्पॉट कैसे छोड़ू, तो वो खड़ा हुआ है। 2:15 बजे महाराज ने फिर पूछा, शैल आई कंटिन्यू? फिर सब लोग ने बोला हरी बोल, और ये बेचारे 100-125 लोग मुंह लटकाए हुए हरी बोल। लेक्चर खत्म हुआ 4 बजे। तो इसलिए यहां पर विदुर जी कहते हैं कि कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी तो काम और भूख के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, केवल धैर्य को बढ़ाना है। धृत्या शिष्णोदरम रक्षेत पाणे पादम च चक्षुषा। हाउ टू कंट्रोल द हैंड एंड द फीट, हाउ टू प्रोटेक्ट द हैंड एंड द फीट, हाथ और पैर को कैसे बचाएं? चक्षुषा, नेत्रों से। हाथ और पैर के लिए सिक्योरिटी गार्ड नेत्र है, क्योंकि अगर यूं चलते चलते आप गए, पत्थर पे पैर पड़ा, गिर गए, तो हाथ पैर में चोट लग जाती है। तो नेत्र हाथ और पैर को बचाता है। फिर कहते हैं चक्षुष श्रोत्रे च मनसा। अब आंखों को और कान को कौन बचाता है? क्योंकि आंखें भी यू यू यहां वहां देखते रहेंगे, कान से भी हम लोग बहुत कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। वॉट प्रोटेक्ट द आईज एंड द ईयर्स? मनसा, माइंड। तो अगर मन नियंत्रित नहीं है तो नेत्र यहां वहां भटकेंगे, कान यहां वहां फिजूल की बातें सुनने पे रुचि प्रकट करेगा। तो चक्षुष श्रोत्रे च मनसा, प्रोटेक्ट द आईज एंड द ईयर्स विद द माइंड। और फिर मनोवाचम च कर्मण, मन और शब्दों को अगर बचाना हो वो कैसे बचाएं? कर्मणा, उचित कार्य और कर्म करके। क्योंकि जैसे गलत कार्य करेंगे उन बुरी आदतों का संस्कार, उसका अमिट छाप मन पे पड़ेगा और फिर वो और तीव्र होगा। तो इसलिए मनोवाचम च कर्मणा, प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम लस्ट एंड हंगर विथ पेशेंस, प्रोटेक्ट द हैंड एंड फीट यूजिंग वंस आईज, प्रोटेक्ट द आईज एंड ईयर्स यूजिंग माइंड, प्रोटेक्ट द माइंड एंड द वर्ड्स यूजिंग प्रॉपर एक्शन एंड प्रॉपर हैबिट्स। तो इसलिए रघुनाथ दास का जीवन बड़े ही ऐश्वर्यशाली परिवेश में था, लेकिन इस बीच भी उनके हृदय के अंदर केवल महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने की अभिलाषा थी, जिसके कारण वो निरंतर प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि महाप्रभु ने भी कहा था, क्योंकि तब उन्होंने रघुनाथ दास उस समय सोच रहे थे, रक्ष के रहात मुई के मोने छुटी बा, के मोने प्रभुर संगे नीलाचल जाब, कब मैं प्रभु के साथ नीलाचल जाऊंगा। तब महाप्रभु ने उनको कहा था क्या? स्थिरे होइया घर जाओ नहाओ बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। धीरज रखो, इतना जल्दी पागलपन मत करो, ये उचित समय नहीं है। क्योंकि प्रयास के साथ साथ अनुकूल समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कार्य के सफलता के लिए। अंतरे निष्ठा कर लोके बाह्य व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमार कुरीबे उद्धार। तब रघुनाथ दास को महाप्रभु ने कहा था, अंतरे निष्ठा कर, अंदर मेरा स्मरण करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए बाह्य लोक व्यवहार, बाहर आप लोक व्यवहार करते रहो, अचिरे कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार, बहुत शीघ्र कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। और कब? जब मैं हाँ वृंदावन आसी जा आबे आसी है नीला चले, तमे तुमी आम पाश आसी है कौन चले, तब तुम मेरे पास आ जाना, मुझे वृंदावन जाके लौटने दो। और तब रघुनाथ दास सोच रहे ये कैसे संभव हो पाएगा, उस समय क्या अलग होगा। से छले से काले कृष्ण स्फुराबे तोमारे, कृष्ण कृपा जारे तारे के रखी ते पारे। तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि आप श्रद्धा पूर्वक केवल प्रतीक्षा करते रहो, स्मरण करते रहो, मनन करते रहो, संकल्प बद्ध रहो। साधक के जीवन में एकमात्र उत्तरदायित्व है कि वो संकल्प बद्ध रहे, और एक बार संकल्प बद्ध बनकर दृढ़ता पूर्वक वो कार्य करता रहे, प्रतीक्षा करे, से छले से काले कृष्ण स्फुरबे तुम्हारे, भगवान को भी उनका काम करने दो, तो उस समय आपके संकल्प को देखकर भगवान की कृपा आप पर होगी और आपको उचित आइडिया भगवान देंगे। क्योंकि जब अवसर के द्वार खुलते हैं वो हर व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाता कि वास्तव में ये दैववश अवसर ने द्वार खोल दिए मेरे अगले कदम चलने के लिए। जब अवसर के द्वार खुलते हैं उसको पहचानने के लिए परमात्मा की कृपा लगती है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। इसलिए तब परमात्मा अंदर से आपको संकेत करते हैं, हाँ अब ये समय आ गया, अगला कदम रखो। तो इसलिए महाप्रभु उनको कहते हैं तब अपने आप सब कुछ होगा। तो ये लगभग 1515 के कार्तिक पूर्णिमा में महाप्रभु प्रवेश किए वृंदावन धाम में। 2 महीना रहने के पश्चात 1516 के जो माघ मेले में महाप्रभु आ गए थे प्रयाग, और तत्पश्चात वो जो है रूप और सनातन 1516 में वृंदावन प्रथम बार आकर फिर एक बार जगन्नाथपुरी आए। तो 1516 और 17 के बीच में रघुनाथ दास जब महाप्रभु लौट के आ गए, इस तरह समाचार मिला, तब रघुनाथ दास एक वर्ष के लिए बारंबार प्रयास कर रहे थे घर से भागने का, लेकिन हर बार उनके पिता उनकी माता कोई कोई गुप्तचरों को भेजकर सैनिकों को भेजकर उनको पकड़कर फिर घर पे लेके आ जाते हैं। तो कई बार ये होने के पश्चात रघुनाथ दास की माता ने अपने पति को कहा, अरे ये तो घड़ी घड़ी भागता रहता है, ऐसा करते हैं इसको किसी रस्सी से बांध कर हम लोग रख देते हैं, कमरे के अंदर बंद रखते हैं, बंदी बना के रखते हैं, नहीं तो ये भाग जाएगा। तो उनके पिताजी कहते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, से सब बांधी के नारी ले कयार मन। कहते हैं कि इनका ऐश्वर्य इंद्र के समान है, और इनका विवाह भी हुआ है, उनकी पत्नी भी अप्सरा की भांति है। ये सब बांधी ते नारी ले कयार मन, ये सब उनको बांध नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कृपा हुई है, चैतन्य चंद्रेर कृपा होया छे इहारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखी ते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिन पर हुई है वह व्यक्ति लगभग पागल हो जाता है, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखी ते पारे। महाप्रभु के प्रेम में पागल हुए व्यक्ति को कौन बांध कर रख सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि डिवाइन कंपैशन मैनिफेस्ट्स इन फोर वेज, जब भगवान की असीम अनुकंपा दिव्य कृपा प्रकट होती है वो चार रूपों में हमारे समक्ष प्रकट होती है। और कब प्रकट होती है? जब कोई भक्त पूरी तन्मयता के साथ दृढ़ संकल्प सिद्ध करके भगवत भक्ति में लगा रहे, इट इज इन रेस्पॉन्स टू वंस फोकस्ड डेडिकेशन। तो जब कोई दृढ़ संकल्प के साथ निश्चय के साथ भगवत भक्ति करता रहे तो फिर भगवान की दिव्य कृपा प्रकट होती है। और उसके लक्षण क्या है कि भगवान की दिव्य कृपा प्रकट हुई है? पहला, वन सर्विस एटीट्यूड ग्रोज, सेवा भाव तत्पर होता है, बढ़ता है। और भगवान उस बढ़ते हुए सेवा भाव को देखकर ऐसे भक्त के ऊपर विशेष उन्हें शक्ति देते हैं। दिस सर्विस एटीट्यूड लीड्स टू एम्पावरमेंट एंड दैट डिवोटी सर्विस बिकम्स इफेक्टिव। तो अपनी सेवा में अगर सफलता चाहिए तो उसका आधार स्तंभ है सेवा भाव। जब भगवान वास्तविक सेवा भाव देखेंगे तभी कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन, तभी कृष्ण शक्ति देंगे। और बिना कृष्ण के शक्ति के कृष्ण की सेवा में सफल होना ये केवल काल्पनिक विचार है। तो इसलिए सर्विस एटीट्यूड गिव्स एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मेक्स सर्विस इफेक्टिव। दिस इज द फर्स्ट यू नो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन कंपैशन। दूसरा, When the Lord is compassionate to somebody, है कि नहीं, one gets the attitude to serve others by offering one's expertise to help others. जब भगवान की कृपा होती है तो हमारे हृदय के अंदर दूसरे भक्तों की सेवा में सहायता करने की इच्छा जागृत होती है। हम दूसरे भक्तों के साथ स्पर्धा नहीं करना चाहते, उनकी सहायता करना चाहते हैं और अपने सद्गुणों को उनके साथ जो है वितरित करके उन्हें भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं भक्ति के इस मार्ग में। सो देयरफॉर ऑफरिंग एक्सपर्टीज टू हेल्प। थर्ड, जब भगवान की शक्ति बढ़े हमारे जीवन में तो ऐसा भक्त भगवान के लिए और सेवा करना चाहते हैं और भगवान का फिर आदान प्रदान बढ़ता है और इसके परिणाम स्वरूप ऐसा भक्त अपने भक्ति के जीवन में अधिक उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। इंक्रीज्ड एम्पावरमेंट लीड्स टू इंक्रीज्ड रेसिप्रोकेशन, लीड्स टू इंक्रीज इन वंस टेकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बिना भगवान की कृपा के कोई अधिक से अधिक उत्तरदायित्व नहीं ले सकता किसी भी क्षेत्र में। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ एम्पावरमेंट दैट वन एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा एंड दैट इंस्पायर्स द डिवोटी टू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीसरा। और चौथा, कि ऐसे भगवान के साथ आदान प्रदान करते हुए उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए सच अ डिवोटी गिव्स वन सेल्फ फुल्ली टू परफॉर्म एक्सलेंट सर्विस एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सलेंस इन हिज सर्विस मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट ड्यूटीज एंड सर्विसेस कम इन सच अ डिवोटीज लाइफ एंड दैट शुड बी सीन एज रिवॉर्ड एंड प्रमोशन बाय द लॉर्ड। जब ऐसा भक्त अपने आप को पूरी तरह समर्पित होकर और तीव्र भाव से उत्कृष्ट सेवा करने का जब प्रयास करता है तो भगवान ऐसे भक्त को पुरस्कृत करते हैं। कैसे? और जटिल और पेचीदार सेवा उसके जीवन में देते हुए। ये भगवान की कृपा का एक लक्षण है। तो इसलिए यहां पर रघुनाथ दास के विषय में उनके पिताजी कह रहे हैं, चैतन्य चंद्रेर कृपा होइया छे इहारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखीते पारे। तो इस प्रकार ये चार लक्षण कृपा के हैं, पहला टू सर्व, सेकंड टू शेयर, थर्ड रेसिप्रोकेट एंड फोर्थ इज वन रिसीव्स द लॉर्ड्स अप्रिसिएशन एंड वन अप्रिशिएट्स द अपॉर्चुनिटीज वन इज रिसीविंग टू सर्व। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की पाश्चात्य देश में, उस समय न्यूयॉर्क में एलन जिन्सबर्ग नाम के व्यक्ति प्रभुपाद से जुड़ गए। उस समय वो हिप्पी मूवमेंट के महाजनों में से थे, तो जो भी उसका अर्थ हो आप अनुमान लगा लीजिए। अब वो प्रभुपाद जी के बहुत बड़े फैन हो गए और कई लोग प्रभुपाद के कीर्तन में आते थे ये देखकर कि एलन जिन्सबर्ग आता है, ये भी आता है तो पर हम लोग भी आएंगे। तो एक दिन प्रभुपाद जी के साथ बैठकर वो चर्चा कर रहे थे और प्रभुपाद बता रहे थे 12वें स्कंद भागवत से कि आपको पता है क्या कि 12वें स्कंद में कलयुग में आगे क्या क्या आने वाला है, इसका वर्णन है, भविष्यवाणी है। और म्लेच्छराजन्य रूपिणा बहुत बीभत्स रूप से लोगों की हत्या की जाएगी, अत्याचार होगा, और एक समय आएगा जब कलयुग आगे बढ़ता चला जाएगा, कल्कि अवतार स्वयं प्रकट होंगे और कल्कि अवतार प्रकट होकर इसी कलयुग में वो आकर अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो एलन जिन्सबर्ग ने तुरंत प्रभुपाद को पूछा कल्कि अवतार का संदेश क्या होगा। प्रभुपाद ने कहा कोई संदेश नहीं होगा, तलवार से काटेंगे सबको, जितने उस समय पापी जीव होंगे उन सबको समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय लोग इतने पशु तुल्य हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी बिल्कुल एलन जिन्सबर्ग के पास अपना चेहरा लाके बोले यू विल ईट मी एंड आई विल ईट यू, मैन विल ईट मैन। ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, एक दूसरे का लोग भक्षण करने लगेंगे। तो फिर एलन ने पूछा फिर प्रभुपाद जी आपके इस्कॉन के भक्तों का क्या होगा। प्रभुपाद ने कहा तब तक सभी इस्कॉन के भक्त भगवत धाम पहुंच चुके होंगे, और अगर आप उसमें शामिल नहीं होंगे तो आपको कल्कि अवतार का क्लास सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार कलयुग में आगे जो भयावह परिस्थिति होने वाली है उसका वर्णन 12वें स्कंद भागवत में दिया गया है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने प्रयत्न करके पाश्चात्य देश के नौजवान नवयुवतियों को इस मिशन में जोड़ दिया। और यहाँ तक कि उस समय भारत में दूर दूर तक प्रयास करके भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले नहीं कर पाए, लेकिन और अमेरिका में भी जाने के बाद जब यूरोप में प्रभुपाद आए एक बार एम्स्टरडैम मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का इंस्टॉलेशन हो रहा था, लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं क्या करना है क्या नहीं, और प्रभुपाद जी चिल्ला रहे हैं जोर जोर से अरे इंस्टॉलेशन के लिए ये रेडी नहीं है वो रेडी नहीं है, यज्ञ के लिए फ्रूट कहाँ है। तो प्रेसिडेंट ने कहा फ्रूट सलाद में डाल दिया हमने। फिर प्रभुपाद धम 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 करके आवाज सुनाई दिया प्रभुपाद को, तो घबरा कर ऑल्टर के अंदर गए, देखा कि ऑल्टर का साइज छोटा था, जगन्नाथ जी बड़े थे, ये लोग धक्का मारकर जगन्नाथ को अंदर धकेल रहे। प्रभुपाद जी ने ऊपर का पोर्शन कटवाया और मीडिया सब टेलीविजन चैनल आया हुआ था, और जब ऑल्टर के ऊपर का भाग को लेकर जाने लगे तो मीडिया वाले बोलने लगे सेरेमनी स्टार्ट हो गया है। और प्रभुपाद जी बड़ा क्रोध में बाहर निकले और बार बार बोल रहे थे विच रास्कल इज रिस्पॉन्सिबल, कौन इसका जिम्मेदार है जो इतना सब गड़बड़ किया है। और प्रभुपाद आके गुस्से में आके बैठे सीट पर, प्रभुपाद जी के पीछे एक हिप्पी था, प्रभुपाद जी के पास ये हिप्पी एक माला लेकर प्रभुपाद को बोलता है पीछे से यू यू यू, प्रभुपाद मुड़े, वो हिप्पी बोलता है प्रभुपाद को डोंट बी एंग्री चैंट हरे कृष्ण, क्रोधित मत हो जाइए आप हरिनाम जपिए। प्रभुपाद भी नम्रता पूर्वक उसको ले लिए माला को। तो ऐसी परिस्थिति में जब लोगों के पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी कि भक्ति क्या है और डीटी इंस्टॉलेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या, लेकिन प्रभुपाद पूरे तीव्र गति से चल रहे थे। और फिर प्रभुपाद ने भारत में इस्कॉन की स्थापना करने का निश्चय किया, पाश्चात्य देश के भक्तों को लाया, 20-25 लोग ही थे, उन्हीं में से लोगों को बॉम्बे में रखते थे, फिर कभी कलकत्ता लेके जाते थे, कभी दिल्ली लेके जाते थे, और न्यूज़पेपर में आता था हजारों लोग आए अमेरिका से, तो थे वही 20-25, सब जगह वही टोली घूमती थी। तो प्रभुपाद जी इनको लेकर कलकत्ता गए, फिर प्रभुपाद ने कहा देखिए आप लोग वेस्ट में हरिनाम करते हो, हरिनाम संकीर्तन रास्ते पर, वो बहुत प्रसिद्ध है और लोकप्रिय है और सफल है, लेकिन वही प्रयास भारत में नहीं चल पाएगा इतनी अच्छी तरह, क्योंकि लोगों को लगेगा कोई भिखारी लोग आ गए यो 54-58 फेंक देंगे। इसलिए इंडिया में प्रभुपाद ने कहा लाइफ मेंबर प्रोग्राम, हम लोगों के घर पर जाएंगे, उनको मेंबर बनाएंगे। सूरत में गए प्रभुपाद जी और बोले जो भी मेंबर बनेगा उनके घर पर हम प्रसाद के लिए आएंगे। तो दिन में कई लोग मेंबर बनते थे, प्रभुपाद जी हर जगह जाते थे। फिर प्रभुपाद बोले बाहर की दुनिया में लोग होटल जाते हैं, खाते हैं और पैसा भरते हैं, हमको लोग बुलाते हैं, हम खाते हैं और लोग हमको पैसा देते हैं। तो प्रभुपाद जी कलकत्ता में गए और किसी के घर में खिला रहे थे वो, और भारत में तो नॉर्मल है ही, थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और लीजिए, नहीं 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 थोड़ा और लीजिए, नहीं मतलब हाँ हाँ मतलब नहीं। तब अमेरिकन लोगों को इतना आदत नहीं था कि जो सटल्टीज हॉस्पिटैलिटी इंडिया का, तो लोग नो नो बोलते थे, फिर भी लोग पटक देते थे, तो उनको लगा शायद यही नियम है, तो बोलते थे ओके पुट। तो बहुत भरपेट एक भक्त खाया और 3C अल्बर्ट रोड मंदिर में जाने के बाद पेट पकड़ के बोलने लगा प्रभुपाद जी मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये क्या लाइफ मेंबरशिप के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये आइडिया अच्छे नहीं, ठीक नहीं है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा होगा ही, 25 पूड़ी खाया तूने। वो बोले अरे आपको कैसे मालूम? प्रभुपाद बोला मैं गिन रहा था। और दूसरा ब्रह्मचारी जोर से हंसने लगा हा हा हा। प्रभुपाद ने कहा तुम मत हंसो, तुम 15 खाया। प्रभुपाद ने कहा हम लोग यहां जा रहे हैं घरों पर जिससे संबंध स्थापित हो सके और हम लोग उन्हें भक्ति के विषय में बता सके, और भारत में तो सभी लोग खिलाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी खाते चले जाओ। तो हम लोग यहां पर्पस से आए हैं क्योंकि वेस्टर्न लोगों को देखकर इनके मन में कौतूहल है कि कौन है, कहां से आए हैं और बड़ा संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें हम अपना मेंबर बनाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखकर आप चलो। प्रभुपाद जी गए, जो टाइगर लॉक कंपनी था अलीगढ़ में, उनके वहां पर मेन प्रोग्राम उनका रखा गया। ये लगभग 1975 की बात है, भारत में इमरजेंसी चल रहा था और पॉलिटिकल इमरजेंसी के समय उस समय का जो नारा था वो था काम अधिक बातें कम। तो प्रभुपाद जी को जो है वो अटक गया क्योंकि बस में यहाँ वहाँ सब जगह वो पेंटेड था। तो प्रभुपाद जी लेक्चर चालू किए और उस समय के जो सरकार के एक मंत्री भी आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, वो बैठे हुए थे। और प्रभुपाद शुरू हो गए और प्रभुपाद बोलने लगे सरकार का नारा है काम अधिक बातें कम, लेकिन हमारा नारा है काम कम बातें अधिक। तो सब लोग घबरा गए, बोले ये क्या बोल रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रत। भगवान भगवद गीता में कहते हैं समय निकालो, कीर्तन करो, ध्यान दो, मन मना भव मत भक्तो। अर्थात प्रभुपाद कहने लगे कि समय निकालो गीता के लिए, ये मत बोलो कि हम बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं, काम ही करते रहेंगे, नहीं, कृष्ण की बातें भी सुनो। इसलिए काम कम बातें अधिक, काम कम बातें। और प्रभुपाद के लेक्चर का स्टाइल एक पकड़ लिया तो उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे वो 20-25 मिनट के लेक्चर में। प्रभुपाद ने कहा मेरा स्टाइल है कि कराटे में जैसे देखता है सामने वाले का वीक पॉइंट है, वो दिख गया उसको मारते रहो जब तक वो बोला हाँ सरेंडर। तो प्रभुपाद बार बार बोलने काम कम बातें अधिक, काम कम बातें अधिक, सरकार कहते काम अधिक बातें, काम कम बातें अधिक, वो होस्ट था, घबरा गया, भागा भागा आया स्टेज पे, प्रभुपाद के कान में बोला, इतना जोर जोर से आप बोल रहे हो, सरकार की आलोचना कर रहे हो, काम कम बातें अधिक बोल रहे हो, मंत्री आए हैं। प्रभुपाद तुरंत माइक पे बोले, कहाँ है मंत्री जी? तो मंत्री जी खड़े हो गए, बोले, स्वामी जी मैं यहां हूं। प्रभुपाद ने कहा, हम तो गीता को दोहरा रहे हैं, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को युद्ध से पहले उन्होंने गीता सुनाई, थोड़ा समय निकालकर गीता में समय देना चाहिए सुनने के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं काम कम बातें अधिक, इसमें कोई गलत है क्या? मंत्री बोले, आप बिल्कुल ठीक करते हो स्वामी जी। तो प्रभुपाद होस्ट को देखे, बोले, देखो मंत्री जी भी मानते हैं हमारी बात को। तो प्रभुपाद जी धीरे धीरे करके भारत में भ्रमण कर करके मेन तीन चार शहरों में इस्कॉन की स्थापना उन्होंने करवाई, जिससे कि लोग महाप्रभु की कृपा को भारत में अनुभव कर सके। शुनि प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोमार करिलो दंडन। तो तब रघुनाथ दास ने विचार किया कि उस समय तो वो सप्तग्राम में रहते थे, आदि सप्तग्राम, और निकट ही क्या था आपका पानीहाटी, और उस समय पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु थे और नित्यानंद प्रभु सबको अपना दर्शन दे रहे थे। तो रघुनाथ दास ने विचार किया कि चलो भाई, महाप्रभु के पास जाने का मेरा प्रयास बारंबार विफल हो रहा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा लेते हैं। तो ये सोचकर वो नित्यानंद प्रभु के पास गए, और नित्यानंद प्रभु एक चट्टान के ऊपर बैठे थे वृक्ष के नीचे, और बड़े दिव्य आभा उनके उनकी अंग कांति चारों दिशाओं में फैल रही थी। नित्यानंद प्रभु के उस भगवत भक्ति के उन्माद को देखकर प्रभावित होकर वो दूर ही खड़े रह गए और निकट नहीं आए। नित्यानंद प्रभु के पास जाकर किसी भक्त ने कहा, रघुनाथ दास आए हैं। नित्यानंद प्रभु इसको सुनकर कहते हैं, चोरी चोरा दिला दर्शन, अरे तुम चोर हो और मुझे दर्शन देने आए हो, आए आए आज तोमार करीमु दंडन, आओ मेरे पास, आपको दंड दूंगा मैं। तो नित्यानंद प्रभु ने इनको चोर क्यों कहा? शुनि प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, चोर क्यों कहा? क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको अगर लेने जाए बिना नित्यानंद प्रभु के अनुमति के, ये चोरी के बराबर है। अर्थात कृष्ण की सेवा किसकी संपत्ति है? गुरु और वैष्णवों की संपत्ति है। डायरेक्ट जाकर हम कृष्ण की सेवा छीनने का प्रयास करेंगे, वो चोरी हो गई। इसलिए वो कहते हैं, प्रभु बोलाए ते हो निकटे, न करे गमन, आकर्षिया तारा माथे धोरिला चरण। नित्यानंद प्रभु के बुलाने पर भी वो निकट नहीं आए, तो बाकी सब भक्त लोग उनको निकट लेके गए, और तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास के मस्तक को अपने चरणों में समर्पित किया। आकर्षियांग तारा माथे प्रभु धोरिला चरण। तो नित्यानंद प्रभु के चरण रज को मस्तक पर अलंकृत करने के पश्चात उठकर प्रणाम करने लगे नित्यानंद प्रभु को। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथे कहे किछु होइया सदय। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, नित्यानंद प्रभु बड़े दयावान थे और एक हास्य से अभिभूत उनका व्यक्तित्व था, हास्य परिहास में बड़ा आनंद लेते थे, इसलिए अवधूत भी कभी कहा जाता है। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथ कहे किच्छु होइया सदय। और बड़ा दयावान होकर रघुनाथ दास को कहने लगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु समझ रहे थे रघुनाथ दास की अवस्था क्या है। क्योंकि जब रघुनाथ दास महाप्रभु को शांतिपुर में सभी वैष्णवों के बीच मिले थे, तब रघुनाथ दास के साथ नित्यानंद प्रभु भी थे अद्वैत आचार्य के घर पर, उस समय महाप्रभु ने उनको जो आदेश दिया था उससे ये भली भांति परिचित थे और जानते थे। रघुनाथ दास के मन में केवल एकमात्र तीव्र इच्छा निरंतर पनप रही है, किस प्रकार अपने भौतिक श्रृंखलाओं की बेड़ियों को काटकर मैं महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो जाऊं, और इनकी महत्वाकांक्षा को बारंबार उनके पारिवारिक सदस्य काट रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को बिना बोले ही सब कुछ ज्ञात था, इसलिए नित्यानंद प्रभु भी करुणावश रघुनाथ दास को बताए कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि केवल सेवा करने की इच्छा से कुछ नहीं होता, सेवा तभी सफल होती है जब उचित माध्यम से आप सेवा करो, और जब तक उचित माध्यम नहीं होगा आपकी सेवा कभी सफल नहीं होगी। और वो उचित माध्यम क्या है कि आप डायरेक्ट भगवान के पास जाने का प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन भगवान कौन देता है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु भगवान की सेवा समर्पित करते हैं। और गुरु कैसे संतुष्ट होते हैं, जब वैष्णवों की सेवा हो। तो इसलिए वैष्णव सेवा से वैष्णव संतुष्ट होते हैं, वैष्णव के संतोष से गुरु संतुष्ट होते हैं, गुरु के संतोष से भगवान संतुष्ट होकर हमारे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। निकटे न ऐसा चोर भाग दूरे दूरे, आजी लाग पाया छी दंडी मो तुम्हारे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आप मेरे निकट नहीं आ रहे, दूर दूर भाग रहे हो चोर की भांति, आज ही लाग पाया छी, आज तुमको पकड़ लिया है, और इसलिए अब मैं आपको दंडित करना चाहता हूं, मैं आपको दंड दूंगा। अब दंड सुनकर किसी को लगेगा पता नहीं क्या देने वाले, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु हैं तो उनका दंड भी बड़ा मजेदार है। क्या? दधि चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे, सुनियानंदित होइला रघुनाथ मने। कि अभी सभी जितने भक्त लोग हैं यहां पर जो यहां एकत्रित हैं पानी हटी में, उनको क्या खिलाओ, दधि और चीड़ा, चीड़ा दही खिलाओ। दधि चीड़ा भक्षण कराह मोर गणे, हमारे अनुयायियों को ये सब खिलाइए। सुनी आनंदित होइला रघुनाथ मने, सुनकर रघुनाथ दास भी बड़े प्रसन्न हो गए। महोत्सव सुनी पासरी नाना ग्राम होते, चीड़ा दधि कला संदेश कला आनिया बेचीते। तो महोत्सव की घोषणा सुनकर आसपास जितने चीड़ा दही केला संदेश बेचने वाले जितने व्यापारी थे सब आकर दुकान लगा दी, बोले यहां पर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। और तब रघुनाथ दास जो कि कितने बड़े अरबपति थे, उस समय के जो भारत के सबसे धनवान परिवारों में से थे, यत्र द्रव्य लैया ऐसे सब मूल्य कोरी लोए, तार द्रव्य मूल्य दिया ताहरे खाजो यही। तो उसको मूल्य देकर जितना माल जितने लोगों ने लेके आया था, जितना चीड़ा खरीद लिया, जितना दही था खरीद लिया, जितने केले के व्यापारी थे सब केला खरीद लिया, जितना संदेश लाया था सब खरीद लिया। अब उन जब रघुनाथ दास चलते थे तो उनके पिताजी उनके साथ लगभग 7 या 8 लोग साथ में रखते थे, 4-5 तो केवल सिक्योरिटी थे, 1-2 ट्रेजरर हाथ में सोने के मुद्राओं की थैली लेके चलते थे, कहीं राजा बाबू को कहीं कुछ खरीदना पड़े तो सोने की मुद्राओं की थैली लेके चलते थे, समझ रहे हैं, 5-10 रुपए का नोट का थैली नहीं, सोने की मुद्राओं की थैली लेके चलते थे। और फिर 1-2 तो केवल कुक थे डेडिकेटेड, जहां पर भी रुके वहां किचन लगाओ भोजन खिलाओ इनके हिसाब से। तो ऐसा ऐश्वर्य हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। है कि नहीं? अगर किसी को लगता है कितना बड़ा वैराग्य का प्रदर्शन हमने किया है, तो थोड़ा रघुनाथ दास जी के बारे में सुन लीजिए, तुरंत समझ जाएंगे कि हम अभी कंगाल हैं, पहले भी कंगाल ही थे केवल बंगाल वैष्णविज्म से जुड़ गए और बाकी कुछ नहीं। तो रघुनाथ दास के पीछे इतने लोग चलते थे ये सब हाथ में लेकर, तो रघुनाथ दास ने उन सबको खरीद लिया जितना कुछ माल था, और सब भक्तों को बिठाकर वहां पर सुंदर व्यवस्था की और चिड़ा दही बनाकर वो खिलाने लगे पानी हट्टी में। नित्यानंद प्रभु की प्रेरणा से महाप्रभु भी वहां प्रकट हो गए, और किसी को दिख नहीं रहे थे महाप्रभु, केवल नित्यानंद प्रभु को दिख रहे थे, और पूरा वो स्थान भर गया, खचाखच जगह ही नहीं था। और फिर गंगा के अंदर भी कुछ लोग उतर गए, बोले अब सेकेंड राउंड वगैरह छोड़ो, हम लोग आधा खड़े होकर खत्म करेंगे, क्योंकि क्या बचेगा कोई भरोसा नहीं। तो फर्स्ट राउंड में ही सबने खत्म किया उसको, कुछ लोग बाहर कुछ लोग अंदर। पहले हमारी यात्रा में हम लोग का ये स्टैंडर्ड होता था, महाराज हमेशा जो है पानी हाटी में रोककर बसों को रोककर उतर के फिर चिड़ा दही फेस्टिवल एक कलकत्ता के भक्त आयोजित करते थे, हम लोग पूरा चिड़ा दही वगैरह उत्सव वहीं पे करके आगे निकलते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये चिड़ा दही उत्सव के माध्यम से नित्यानंद प्रभु क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि रघुनाथ दास के जीवन में सबसे बड़ी अड़चन बाधा थी कि एच्छाए गोसाएं जार चरण वंदन जहां हुए थे विघ्न नाश अभीष्टा पूरण, उनकी अभीष्टा पूरण इच्छा पूरी नहीं हो रही थी और विघ्न नष्ट नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए उपाय क्या है? वैष्णव सेवा। जब वैष्णवों के हम सेवा करेंगे, उनको संतुष्ट करेंगे, प्रसन्न करेंगे, तो उनके आशीर्वाद से जिस हद तक अड़चने और बाधाएं समाप्त होकर हमारे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति होगी, ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो इसीलिए केवल शास्त्र ही पढ़ते रह गए तो भी हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना आशीर्वाद के हम लोग अड़चनों से मुक्त नहीं हो सकते। अब दूसरा, नित्यानंद प्रभु जानते थे कि रघुनाथ दास कितने बड़े अरबपति हैं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति, आज के जो लैंग्वेज में बिलियनेयर। बिलियनेयर मतलब क्या? मिनिमम 6,000 करोड़, 6-6.5 करोड़ का मालिक, बिलियनेयर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस श्रेणी के थे। बंगाली में अपना चैतन्य चरितामृत लिखा है तो एक श्लोक दूसरा श्लोक पढ़ते पढ़ते अपने को लगता है कुछ तो लिख दिया है। हाँ, रघुनाथ जी धनी थे, हाँ धनी थे, धनी थे। अरे कितने धनी थे! तो इतने धनवान व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के सामने आए, नित्यानंद प्रभु बोल रहे तुम चोर हो, तुमको दंडित करूंगा, तो अपने को लगेगा, बोलेंगे मंदिर बांधो, बड़ा मंदिर बांधो, है कि नहीं, पत्थर का मंदिर बांधो 50-60 हजार गनफुट का, पानी हटी में मंदिर हो जाए। नित्यानंद प्रभु ये नहीं कहा, नित्यानंद प्रभु का चीड़ा दही बांटो, जो कि पोहा है, सबसे सस्ता और नम्र आइटम में आता है, उसको प्राप्त करना सबसे सुलभ है, और पोहा को प्लेट में देखकर किसी के अंदर कोई विशेष जो है उल्लास नहीं होता कि ओह पोहा, पोहा आ गया तो बोलते हा हा ये क्या हुआ। सुदामा जी को जो सुदामा जी भी अफोर्ड कर पाए वो है पोहा, है कि नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि वैष्णवों की मैं सेवा कैसे करूं, ये सोचकर चिंतित मत हो जाओ, क्योंकि प्रमाण महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इच्छा महत्वपूर्ण है, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि कितने मात्रा में मैं सेवा कर सकूं। तो हम सभी के अपने निजी सामर्थ्यानुसार हमें सेवा करनी है, सामर्थ्य अनुसार अगर हम वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयास करें, जैसे नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को लगाया, करोड़पति को लगाया, क्या खिलाने में? दही और पोहा को मिलाकर खिलाने में। नित्यानंद प्रभु बोलते 56 भोग की तैयारी करो, शुद्ध घी में, ड्राई फ्रूट के साथ, और वो भी रघुनाथ दास के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो करवा सकते थे। लेकिन क्या कहा? चीड़ा और दही, और मैक्सिमम उनका क्या आया? केला। फलों में भी कोई ऐसा हाई फाई फल नहीं मंगाया, केला। तो अगर हम वैष्णवों की कृपा चाहते हैं तो प्रामाणिक इच्छा से उनको जब संतुष्ट करें तो अपने आप हर प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं विथ रेस्पेक्ट टू लीडरशिप, 6 लेसन्स ऑन लीडरशिप। पहला, लीडरशिप मीन्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर ऑफ लव वेयर पीपल बिगिन टू एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट। आध्यात्मिक परिवेश में हम लीडरशिप का अर्थ क्या, कि इस तरह का परिवेश हम तैयार करें प्रेम का। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही चीड़ा दही महोत्सव हुआ तो सभी का एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ गया। चीड़ा दही खिला रहे हैं और रघुनाथ दास खिलाए जा रहे हैं और सब लोग बड़ा आनंदित होकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, के लिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मंगल में रहो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। जब आदमी का पेट भरता है तो अपने आप कृपा भी बाहर आती है कि नहीं? जितना वो संतुष्ट होने लगता है वो बिल्कुल एक उन्माद में चला जाता है, बोलता है अरे बोलो क्या है, क्या इच्छा है, बताओ, पूरी करो, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं? और उतना ही अगर क्रोधित भी हो जाए, कम मिला या ठीक से नहीं मिला या गड़बड़ हो जाए, तो उसका दूसरा भी एक इम्पैक्ट आता है। 2006 में मैं अमेरिका में था तो प्रोग्राम के बाद जो हमारे होस्ट थे वो मेरे को बोले एक अलग कमरे में मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, अलग कमरे में गए, अंदर गए तो दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बोला अरे बाप रे, पिटाई करने वाले गए। फिर जैसे ही दरवाजा बंद किया, सीधा साष्टांग प्रणाम करके मेरे पैरों को पकड़ लिया, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने यार मैं तो तुमको जानता भी नहीं, इतना पहली बार मिला हूं, अपराध करने का चांस कहाँ था? वो बोले 3 साल पहले प्रभुपाद डिसअपीयरेंस फेस्टिवल में, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे के दिन फोगला आश्रम में आपका प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, उस समय हम लोग आए थे और प्रसाद के लिए बैठे, हम थोड़ा लेट आए, बाकी सारा आइटम मिल गया, पूरी नहीं मिली। तो हमने पूछा पूरी कब आएगी, तो बोले अभी तैयार हो रहा है, आप बैठे रहो। तो हम लोग वेट करते रहे करते रहे करते रहे, आधा घंटा वेट किया, पूरी नहीं मिला। मैंने पूछा कौन इंचार्ज है, बोला गौरांग प्रभु। मैंने गाली दी आपको, आपने ही सुने, मैंने दिया। इसलिए मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो इसलिए क्षमा करें। क्योंकि उस समय क्या फास्टिंग टिल नून था और स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा था, पूरी भी नहीं आ रही थी, माथा गर्म हो गया। तो मैंने कहा बाप रे, आप तो व्यक्त कर रहे हो, बाकी तो साइलेंसर वाले कितने मिसाइल चलते होंगे, क्या भरोसा। इसलिए आप चिंता मत करो, होता रहता है। तो इसलिए यहां पर टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर ऑफ लव, ददाति प्रतिगृहणाति गुम्याक्ति पृच्छति भुंगते भोजयति, वेयर पीपल बिगिन टू एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट। दूसरा, सीख पॉजिटिव लेसन्स इनहेरेंट इन नेगेटिव एलिमेंट्स। चाहे परिस्थिति हमें विपरीत क्यों न लगे, क्योंकि रघुनाथ दास बार बार भागने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या है, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, नहीं, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव तत्व क्या निकल सकता है, तो क्योंकि पोस्टपोन हुआ अभी वो नित्यानंद प्रभु के पास आकर ये सेवा कर सके। तीसरा, लुक हाउ टू टेक स्टेप्स टू मेक द हायर गुड हैपन। ये सोचिए, ये ना सोचिए कि अरे मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, लेकिन ये सोचिए कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे वैष्णव समुदाय को मैं इस वर्तमान परिस्थिति में भी संतुष्ट कर सकूं। तो जब रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु के पास गए, वो ऐसा चेहरा उतार कर और क्रोध में नहीं गए, अरे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, निकलने नहीं मिल रहा है मुझे, क्या चल रहा है ये। रघुनाथ दास गोस्वामी को जैसे बोला नित्यानंद प्रभु ने, सेवा करो, चीड़ा दही बांटो, उन्होंने ये नहीं कहा अरे वो तो बांटेंगे लेकिन मेरा क्या, कितनी बार प्रयास किया अभी तक हो ही नहीं रहा है, आप बोलते हो चीड़ा दही बांटो यार और कुछ मिला नहीं क्या। नहीं, उस परिस्थिति में अनुकूल क्या कर सकते हैं, लुक हाउ टू टेक स्टेप्स टू मेक द हायर गुड हैपन। फोर्थ, एवरीथिंग इज अवेलेबल इफ यू कनेक्ट प्रॉपरली। सब कुछ उपलब्ध होता है अगर ठीक तरह से हम संबंध स्थापित करें कृष्ण के साथ, वैष्णवों के साथ और अपनी सेवा के साथ। जब हम संबंध उचित प्रकार से स्थापित करेंगे तो अपने आप सब कुछ प्रकट होने लगेगा। ऑलवेज एग्जामिन ईच सिचुएशन केयरफुली टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ईच इंटरेक्शन। हर आदान प्रदान के माध्यम से सबसे अधिक हम लाभ, आशीर्वाद, कृपा कैसे प्राप्त करें। अब मुझे इस भक्त के साथ आदान प्रदान करने का अवसर मिला है, इनकी सेवा करने का अवसर मिला है, ऐसा क्या करें जिससे अधिक से अधिक कृपा मिले। इस अवसर को छोड़े नहीं। छठा, इफ पीपल डू नॉट मूव टू अ डीपर लेवल दे विल रिमेन इम्प्रेजेंट इन सुपरफिशियलिटी। अगर लोग और गहरे स्तर पर नहीं उतरेंगे, वो ऊपर ही ऊपर स्तर पर जो बोतल के बाहर चाटते चले जाएंगे और बोतल के अंदर के मधु को चख नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस्कॉन इज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इन अ सोशल सेटअप। इट इज नॉट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्पिरिचुअल सेटअप। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक आदान प्रदान पे बल देना है सामाजिक परिवेश में, सामाजिक आदान प्रदान पे बल नहीं देना है आध्यात्मिक परिवेश में। बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए अगर केवल सामाजिक स्तर पर ही हम आदान प्रदान करते रहेंगे और आध्यात्मिक तत्व को महत्व नहीं देंगे तो हम लोग केवल बोतल के बाहरी भाग को चाटते रहेंगे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को जो विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया, उन वैष्णवों की सेवा करके उनको संपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आके जो है प्रश्न उठाने लगे, आप कहते हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये वो, कृष्ण कहते हैं कि जो है उनको आप खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, भोग लगाओ, प्रसाद लो, कौन किसने देखा है कि भगवान खाते हैं, एक सब कपोल कल्पित बातें हैं, किसने देखा है भगवान खाते हुए, आपने देखा है क्या? प्रभुपाद को पूछे, प्रभु तो वो कहता मुझे तो नहीं लगता भगवान खाते हैं, मेरा मत है कि वो नहीं खाते। प्रभुपाद ने कहा अरे कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त आप प्रेक्षति अश्नामी, कृष्ण कह रहे मैं खाता हूं और तुम कहते हो वो नहीं खाते हैं, तो मैं किस पे विश्वास करूं? शुड आई बिलीव इन कृष्णा और अ लोफर लाइक यू? वो आदमी घबरा गया, बोले ये क्या है। तो प्रभुपाद जी का आत्मविश्वास पूर्ण था कि जो कुछ हम लोग कर रहे हैं कृष्ण की वाणी के आधार पर। एक लाइफ मेंबर को प्रभुपाद जी ने पूछा, ठीक है आप मेरे से गीता सुन रहे हो इतने मॉर्निंग वॉक पर, तो बताइए कौन सा श्लोक आपको सबसे अच्छा लगा गीता का? वो कहता है जब कृष्ण कहते हैं ना लास्ट में अर्जुन को यथेच्छसि तथा कुरु, जो अच्छा लगे अर्जुन वो करो, क्या मर्म है गीता का, ये बिल्कुल परफेक्ट लगा, फोर्स नहीं करते। प्रभुपाद ने कहा रे उसके पहले सर्वधर्मान परित्यज भी बोला है, वो आपको ठीक नहीं लगा, केवल यथेच्छ से ठाकुर। तो इसलिए जब तक हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। और प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज के साथ और कई भक्तों के साथ बैठकर बोल रहे थे कि वास्तव में मेरी पत्नी ने उस समय कह दिया चाय के लिए बिस्कुट खरीदने के लिए भागवतम बेच दिया, तो मैंने उनको पूछा चाय की मैं, तो उन्होंने कहा चाय, तो मजाक में कहा उसने, उसको पता नहीं था कि मैं चला जाऊंगा, तो प्रभुपाद जी निकल गए। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले हम आपके पत्नी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने चाय को चूज किया, इसके कारण आपका संग लाभ हम लोगों को प्राप्त हुआ, अन्यथा संभव नहीं। किसी ने प्रभुपाद को कहा आपके इस्कॉन वाले केवल किताब वितरित करते रहते हैं, किताब वितरण कर करके वो लोग सब बुक वर्म बनेंगे। प्रभुपाद ने कहा जो बुक नहीं पढ़ेगा वो स्टूल वर्म बनेगा, कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है बताओ। तो प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो भगत जी एक ब्रजवासी प्रभुपाद के पास हमेशा आया करते थे, तो प्रभुपाद जी जो है भगत जी को बोले थे थोड़ा प्रसाद वसाद बनाओ, तो भगत जी तैयारी कर रहे थे और प्रभुपाद जी अंदर आके बोले यार 2 घंटा हो गया अभी तक तुम्हारा कुकिंग रेडी नहीं हुआ। भगत जी बोले क्या करें इतने लोगों के लिए तैयार करना। प्रभुपाद ने कहा अरे मैं तो 50 लोगों का कुकिंग आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। भगत जी बोले ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते शर्त लगाते हो क्या, आधे घंटे में 50 लोगों का कुकिंग में करके दिखा दूंगा, शर्त लगाते तो बोलो। तो भगत जी बोले आपके साथ शर्त लगा के फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप जीतोगे तो आप 500 रुपये रख लोगे और मैं जीतूंगा मुझे बोलोगे 500 रुपये डोनेट कर दो। तो प्रभुपाद जी भारत में रहकर पाश्चात्य देश के भक्तों को लाकर और वृंदावन जैसे स्थान में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना किए, मायापुर में स्थापित किए, बंबई में स्थापित किए, और इस्कॉन की स्थापना के माध्यम से कलयुग के लोगों के लिए वैष्णव संग प्रदान किए। क्योंकि महाप्रभु साक्षात रघुनाथ दास को मिलने के बाद भी रघुनाथ दास महाप्रभु तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो जो दूरबीन होती है ना, तो दूरबीन बहुत दूर कोई वस्तु हो उसको पास दिखलाती है, बाइनाकुलर हो गया या कुछ टेलीस्कोप हो गया, जो हो गया, जो दूर बहुत कोई वस्तु हो उसका निकट प्रतिबिंब प्रदर्शित करती है। इसलिए क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लेंस होते हैं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण बहुत दूर हैं, उनका कोई दर्शन नहीं कर सकता इतनी जल्दी, लेकिन वैष्णवगण कांच के हाई मैग्निफिकेशन लेंस की भांति है। अपने और कृष्ण के बीच जितने लेंस लगाओगे उतना कृष्ण निकट दिखेंगे। तो इसलिए रघुनाथ दास को वैष्णवों की सेवा करने के बाद फिर इच्छा पूर्ति करने का अवसर मिला, ये चीड़ादही महोत्सव का मूल जो शिक्षा यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है। तो आज गोवर्धन इको विलेज में कई नए परिवार जुड़ गए हैं और मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इन परिवारों को पूर्ण हृदय के साथ स्वागत करें। अपने कहाँ गए, अपने श्री गोरचंदपुर आई, वो कौन है, वो श्री गोरचरण नहीं है क्या? अच्छा मुझे लगा वो बैठे हुए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ अरे यार सभी सर्जन ही लगते हैं समझ में नहीं आता कौन क्या है वो चश्मे वाले दूसरे को देख के मुझे लगा वो है, और आप राधा मदन गोपाल लग रहे थे मुझे। तो ये जो परिवारों का नाम बताओ, फिर मैं थोड़ा उनको स्वागत करूंगा।
तो सबसे हमारे वृंदावन प्रसाद प्रभु और राजभक्ति माता जी, उनके सुपुत्र परीक्षित प्रभु, वो आए हैं अभी, जो अपने गोवर्धन स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी में सेवा करने वाले। फिर हमारे राज बलराम प्रभु, उनके परिवार, वाइफ और उनके बच्चे, प्रदीप राज प्रभु, उनकी बहन, ये अभी किचन में सेवा कर रहे हैं, फूड एंड सेफ्टी मैनेजर के रोल पे कर रहे हैं। फिर हमारे मंगल कृष्ण प्रभु और उनकी वाइफ,
अरे पड़े, वो खड़े तो होने दो, उनको जब नाम लेते हो तो पहचानेंगे कैसे।
और वृंदावन प्रसाद प्रभु माता जी, राज बलराम प्रभु, सब खड़े। और फिर हमारे विकास प्रभु, विकास प्रभु जो अभी गेस्ट डिपार्टमेंट मतलब ऑपरेशंस में, गेस्ट रूम में, वो अभी नए जनरल मैनेजर है, उनके वाइफ और उनके बच्चे। तो ये सब फैमिली हमारे, और भी लोग ज्वाइन हुए हैं, ऐसा नहीं है, पर हम पहले इन लोगों का स्वागत करेंगे और लोगों का कुछ समय के बाद करेंगे।
तो इन सभी लोगों का गोवर्धन इको विलेज परिवार में हम हार्दिक स्वागत करते हुए श्री राधा राज बिहारी, श्री राधा वृंदावन बिहारी, मदन मोहन देव और गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि ये उनके ही परिवार के एक अभिन्न अंग बनकर उनकी सेवा करते रहें। सब लोग बोलिए हरी वो, हरी वो, हरी वो।
राधिका माता जी तो गोवर्धन इंग्लिश स्कूल में टीचर है।
हरी वो। तो कृपा करके आप लोग बैठ जाइए। तो अंत में आप लोगों के स्वागत में मैंने एक विशेष डॉक्यूमेंट लाया है। आज हम लोग के गोवर्धन इको विलेज के इतिहास में पहली बार नए लोग ज्वाइन होने पर एक विशेष स्वागत समारोह किया जा रहा है। नहीं तो लोग आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कौन अंदर के हैं, कौन बाहर के हैं। तो आज का ये ऐतिहासिक दिन है जब हम लोग विधिवत जो भी यहाँ पर ज्वाइन होगा उनका हम ओरिएंटेशन कराएंगे, स्वागत करेंगे। तो 10 मिनट के अंदर मैं थोड़ा आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। कल गोपाल कृष्ण महाराज जी का व्यास पूजा मनाया गया, उसमें मैं ये पढ़ने वाला था, लेकिन थोड़ा डॉक्यूमेंट मेरे को लेट मिला। तो मई 28, 1975 कितना साल पहले, 45 साल पूर्व, तो 45 ईयर्स बिफोर का ये लेटर है। गोपाल कृष्ण महाराज उस समय गृहस्थ थे, लेकिन भारत के और एशिया के जीबीसी थे, और प्रभुपाद जी ने वास्तव में डिक्टेट किया उनके साथ। लेटर टू हिज एक्सलेंसी श्रीमान एस बी चौहान, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, सचिवालय, बॉम्बे, महाराष्ट्र। तो ये लेटर किस लिए था? वी थैंक यू फॉर रिसीविंग अस सो नाइसली लास्ट थर्सडे फॉर हियरिंग अबाउट अवर प्रोजेक्ट एट हरे कृष्णा लैंड। दिस लेटर विल सर्व एज अवर ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू बिल्ड अ श्री श्री राधा कृष्णा टेम्पल एट द हरे कृष्णा लैंड इन जुहू, बॉम्बे। तो मतलब 1975 मई में जुहू में, नायरवाड़ी में, हरे कृष्णा का मंदिर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और उस समय प्रभुपाद जी के इच्छा के अनुसार वहां पर वो लोगों ने एप्लीकेशन डाला था, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और पुलिस कमिश्नर रिजेक्ट करते हुए लिखा, 6 मई 1974, पुलिस कमिश्नर गेव टू रीजंस फॉर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर टेम्पल इन हरे कृष्णा लैंड। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल में लीड टू मोर ट्रैफिक कंजेशन ऑन जुहू तारा रोड। नंबर टू, भजन सिंगिंग हैज बीन कंप्लेंड अबाउट इन द पास्ट, इज लाइकली टू बी अ न्यूसेंस इन द फ्यूचर। तो ये दो कारणों से जो है पुलिस कमिश्नर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इनके उत्तर में यहां लिख रहे हैं कि भाई पास में एक सिनेमा हॉल भी है, वहां पे तो कुछ कंजेशन दिखता नहीं, तो फिर हम लोग के यहाँ पे ऐसा कंजेशन क्यों होगा। और फिर दूसरा लिखा है, रिगार्डिंग भजन सिंगिंग बीइंग कंप्लेंड एज अ न्यूसेंस, दिस इज क्लियर ब्लास्फेमी। ये बिल्कुल बराबर प्रभुपाद का इसमें दिख रहा है हाथ। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं उसमें, इस पत्र में, कि इस तरह से इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स विच क्लियरली काउंट्रैक्ट द कमिश्नर्स ऑब्जेक्शन स्टिल द कमिश्नर रिजेक्टेड आवर एप्लीकेशन बाय हिज लेटर. ठीक है ना. And on the other hand, anyone who has complained about kirtan as a nuisance must be categorized as duskritina mudha naradhama maya apahrita jnana asura and so on, as mentioned in a Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद का जो PR था वो अलग ही लेवल पे था. मुख्यमंत्री के लेटर में ये बराबर as it is Bhagavad Gita का डाल दिया. फिर आगे लिखते हैं, as everything is ready for the construction of a Radha Krishna temple in Juhu, we still hope to get the NOC very soon. We have more than 100 big temples all over the world, ityadi, ityadi. और फिर लिखा कि बाकी सब वृंदावन, मायापुर, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता इत्यादि में हमको सपोर्ट मिला, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा. फिर लिखते हैं, ओके, रिसेंटली लोकल म्यूनिसिपल काउंसिलर फ्रॉम जुहू मिस्टर पुष्पकांत मात्रे has raised various objectionable questions about our movement in letters to your good self and several newspapers. So, Pushpakan Matre और Mr. Nair का मिली भगत था. तो ये गिरिराज महाराज को जो कार्तिक में बुक लॉन्च होगा उसमें और क्लियर आपको इसके बारे में डिटेल मालूम पड़ेगा. तो उस समय के जो वार्ड थे, जू का जो वार्ड में जो काउंसिलर थे म्यूनसिपाल्टी के, वो और जो थे मिस्टर नायर, दोनों की मिली भगत थी. और उसके बाद यहां लिखते हैं, द एम इज टू डिसक्रेडिट द हरे कृष्णा मूवमेंट एंड हैरेस द डिवोटीज. मिस्टर मात्रे ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रिवेंट मिसेस नायर, द प्रीवियस ओनर ऑफ द हरे कृष्णा लैंड, फ्रॉम सेलिंग द लैंड टू इस्कॉन. 2 years अगो मिस्टर मात्रे हैड द ऑडेसिटी टू अरेंज फॉर द रूथलेस इलीगल डिमोलिशन ऑफ द राधा कृष्णा टेम्पल. जो आक्रमण होकर वो लोग ने तोड़ा वो भी इन्हीं का ही हस्ताक्षेप था. दिस डिमोलिशन वॉज क्रिटिसाइज बाई रेस्पेक्टेड सिटीजन इन जुहू एंड बॉम्बे बाई द प्रेस, बाई द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे. ऑल्दो इस्कॉन हैज एमिकेबली परचेज द लैंड फ्रॉम मिसेस नायर, द टाइटल ऑफ द लैंड स्टैंड इन द नेम ऑफ इस्कॉन. फॉर रीजन बेस्ट नोन हिमसेल्फ, मिस्टर मात्रे इज स्टिल ट्राइंग टू हैरेस अवर डिवोटीज एंड ड्राइव दम अवे वंस अगेन. He is trying to instigate the government to revoke the permission for all already existing small Radha Krishna temple and to stop the work on our, you know, devotees' residential building for which municipality was already given permission. We have already spent more than 50,000 of public money for laying foundation for residential buildings. Therefore, Mr. Matre is raising so many dubious questions about our movement, even though he knows very well that our movement is purely spiritual. Kitne problems the उस समय, पूरी अनिश्चितता थी कि कैसे मंदिर बन पाएगा. फिर प्रभुपाद लिखते हैं, मिस्टर मात्रे हैज क्वेश्चन्ड वेदर इस्कॉन डिवोटीज आर CIA एजेंट्स. फिर आगे लिखते हैं, मिस्टर मात्रे प्रिटेंड्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट द सेम इश्यू वॉज रेस्ड इन द लोकसभा ऑन 29th नवंबर 1972 इन द अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2382 as raised by Shri Rajdev Singh, member of parliament, Lok Sabha, in the following words. Will the Minister of Home Affairs, Griha Mantri, be pleased to state whether government has found out that ISKCON has contacts or financial obligations with the CIA of USA? तो ये लोकसभा में उठा डॉक्यूमेंट का नंबर भी डाला है. द आंसर गिवन बाय श्री एफ एच मोहसेन, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, वाज दैट द गवर्नमेंट हैज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इस्कॉन हैविंग एनी कॉन्टैक्ट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विद द CIA. तो उस समय सरकार ने उत्तर दे दिया था कि इस्कॉन का कोई CIA के साथ कनेक्शन तो दिखता नहीं है, हमारे पास इसके विषय में कोई जानकारी नहीं. फिर गोपाल कृष्ण महाराज लिखते हैं, डस मिस्टर मात्रे थिंक that the Americans have become so foolish that they have shaved their heads and kept Vaishnav Tilak for chanting and dancing in order to increase their spying business? Every foreign devotee of ISKCON India has been strictly following for 4 years the principles of Krishna Bhakti as propounded by His Divine Grace, including sleeping on the floor, rising at 4 in the morning, attending Mangala Arati, chanting more than 25,000 names of Krishna daily, as well as following the regulative principles of eating, no eating meat, fish, eggs, engaging in no illicit sex life, no intoxication, coffee, tea, cigarettes, no gambling or speculation. फिर प्रभुपाद मतलब के और गोपाल कृष्ण महाराज के जो सेंटेंस है एक साथ जबरदस्त. सच एन ऑस्टियर लाइफ वुड बी डिफिकल्ट इवन फॉर एन इंडियन सीआईडी एजेंट. सच एन ऑस्टियर लाइफ वुड बी डिफिकल्ट इवन फॉर एन इंडियन सीआईडी एजेंट. सो हाउ डज मिस्टर मात्रे एक्सपेक्ट अमेरिकन सीआईए एजेंट्स who are accustomed to unrestricted sense gratification from their birth, to now follow these principles for 4 years and dance in ecstasy in front of the Lord? Phir agla statement. We challenged Mr. Matre or any CIA or CID agent to stay with us for even 1 month under such strict regulative principle. Members of the ISKCON are not CIA agents, but they are sincere devotees trying to render some humble service to their beloved Srila Prabhupada and his mission in India and tolerating all difficulties to do so. So, ye main point hai. Tolerating all difficulties to do so. Kyunki Bhagawan चैतन्य महाप्रभु परंपरा वो लोगों ने योजना बना दी है कहां पर मिशन आगे बढ़ेगा. उनके मिशन को कोई मायका लाल रोक नहीं सकता. इसलिए केवल अपने को चूज करना है कि हमको उसमें भाग लेना है कि नहीं. इसलिए 45 वर्ष के बाद आज राधारास बिहारी मंदिर इस्कॉन पूरे इस्कॉन के 700 मंदिरों का सबसे प्रतिष्ठाशाली, सबसे अधिक जो शक्तिशाली और सबसे अधिक लोग जिसमें दर्शन के लिए आते हैं ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित हो गया है. लेकिन एक समय था मंदिर शुरू होने के एक साल बाद भी जब मंदिर में अगर कोई एक दो लोग आ जाते थे तो वो लोग बहुत खुशियां मनाते थे कि आज दो लोग आ गए, चार लोग आ गए. तो इसलिए कौन्तेय प्रदियाने ही नमे भक्त प्रणश्यति इसकी घोषणा हो गई है कि ये मिशन सफल होके ही रहेगा. तो ये सब 2-4-5 वर्ष का खेल नहीं है, ये लंबा समय चलने वाला खेल है. और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी फोन उठा के यूएस के राष्ट्रपति, अमेरिका के अपना लंदन के राष्ट्रपति, यूके के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के साथ क्या चर्चाएं करते हैं ये आप और हम नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते. इसलिए उच्च स्तर पर भगवान के तत्व के साथ संबंध जुड़ने वाले भक्त लोग क्या क्या चर्चाएं करके क्या क्या योजना बना रहे हैं इसको हम लोग नहीं समझ सकते. इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने अवकात के अनुसार अपनी सीमा में अपना तुच्छ योगदान देते चले जाएं और बाकी जो होना है वो अपने आप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं. तो इसलिए ये गोवर्धन इको विलेज जो शुरू हुआ है ये 1969 में, 1969 में श्रील प्रभुपाद जी ने जो संकल्प किया था कि न्यू वृंदावन में ये 5 बातें होनी चाहिए, कृषि, गोरक्षा, शिक्षा, वृंदावन के 12 वन और वृंदावन के 7 मंदिर और एक गेस्ट हाउस रिट्रीट सेंटर जहां लोग आ सकें और रह सकें. और जो हमारे भागवत में वृंदावन का वर्णन किया गया है जिसमें कृष्ण वृंदावन के बीच और पूरा समुदाय उनके चारों तरफ, ऐसा एक प्रदर्शनी जब तक हम न दें लोग भागवत के पन्नों में विश्वास नहीं रख पाएंगे. तो दशम स्कंद भागवत के वृंदावन लीला में लोगों की श्रद्धा आस्था जागृत करने के लिए प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन की स्थापना की, और उसी न्यू वृंदावन के स्वप्न को जो उस समय साकार नहीं हो पाया उसको साकार करने के लिए परम पूज्य राधानाथ महाराज ने यहां पर बड़े प्रयत्नों के बाद 1988 से प्रयत्न चालू थे। 1988 में राधा गोपीनाथ जी का प्रतिष्ठा हो गया था, 1988 से ही फार्म का लैंड ढूंढना शुरू हो गया था। तो सिटी मंदिर तो बहुत फास्ट ऊपर जाकर विश्व प्रसिद्ध हो गया, चौपाटी इस्कॉन, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को स्थापित करने में कई कई चुनौतियां रहीं, और उन चुनौतियों को जूझते हुए संघर्ष करते हुए हम लोग अब इस पड़ाव तक पहुंचे हैं, और हर भक्त को हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे जो महाराज के इस स्वप्न को साकार करने में सक्रिय योगदान दिए। कांग्रीगेशन के भक्त, इंटरनेशनल डिवोटी समुदाय, यहाँ के जितने कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, आश्रम के लोग हैं, सभी लोगों ने अपना जो वर्तमान में है, जो भूतकाल में रहे, जिसने भी जिस हद तक इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक लाने में सहायता की, उन सभी के हम हृदयपूर्वक कृतज्ञ हैं। और हम सभी लोग मिलकर इस परिवार में जुड़ने वाले नए सदस्यों का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं, जिससे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रचार कार्य को, श्रील प्रभुपाद जी के इस वृंदावन की स्थापना के इस स्वप्न को लोगों तक पहुंचा सके। ये कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं, ये कोई होटल नहीं, ये कोई बिजनेस एंटरप्राइज नहीं, ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, लेकिन मूल रूप से ये वृंदावन की ऐसी स्थापना, जिस प्रकार का प्रयास प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर में किया, जिससे कि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर हो जहां पाश्चात्य देश के लोग भी आकर देख सकें और समझ सकें, बैठ सकें, तो वैसे यहाँ के लोकल लोग और पाश्चात्य देश के लोग सभी के लिए एक अनुकूल परिवेश में कैसे वृंदावन का अनुभव किया जा सके, उसको लेकर ये प्रकल्प आरंभ किया गया है। और नॉर्मल इस्कॉन के मंदिर में जहां राधा कृष्ण के विग्रह हैं, वहां कौन जो श्रद्धालु है वही जाता है, पहले से जिसको लगता है मैं हिंदू हूं या मैं विग्रह की सेवा करना चाहता हूं या दर्शन करना चाहता हूं, वही जाता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट को ऐसे बनाया गया है जिससे मान लो 100 में अगर 10 आदमी मंदिर देखने जाए ये कह के कि भाई भगवान के दर्शन करने हैं, और 90 लोग न जाए क्योंकि बोले मुझे भगवान भगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं, क्यों मैं मंदिर क्यों जाऊं, तो ये प्रोजेक्ट ऐसा बनाया गया कि बाकी जो 90 लोगों को भी कैसे पकड़ा जाए। तो उसमें हो सकता है 10-20 लोग बोले मंदिर में मेरा कोई विश्वास नहीं लेकिन अपना स्वास्थ्य अपने को ठीक रखना है, तो उन लोगों के लिए आयुर्वेद है, योग है। कोई बोले अरे ठीक है मंदिर उंदिर नहीं लेकिन हमको जो है कुछ सोशल सर्विस करना है, तो ठीक है उनके लिए ग्राम विकास के कई कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। और कोई कहता है नहीं हमको ये, हमको केवल जो है गो सेवा में हम विश्वास रखते हैं। तो चाहे आपकी जिस प्रकार की रुचि हो, कई दूसरे ऐसे आकर्षण के केंद्र इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं, और इसको डिजाइन भी इस तरह किया गया है कि सारा आध्यात्मिक परिवेश इस तरफ है जहां भगवान मेन डीटी है, यहां से लेकर वृंदावन फॉरेस्ट श्रीजी मंदिर तक पूरा आध्यात्मिक। कोई कहता मुझे आध्यात्मिक आदमी, मैं डीटी वीटी नहीं, मैं ही डीटी हूं, तो ठीक है भाई आयुर्वेद उधर है, तेरी आरती वहां उतारेंगे, वहां चला जा। तो ये प्रोजेक्ट के दो भाग हैं, इस तरफ हमारे डीटी ये हैं, उस तरफ आप बनोगे डीटी, तो आपको चूज करना है किस तरफ। तो उस तरफ फिर अगर व्यक्ति फिर थोड़ा अपने आप का मनोरंजन करने के बाद फिर सोचे कि अरे इस तरफ क्या है भाई, तो यहां पर फिर अपना उसका जब मालिश वालिश हो जाए और खुश हो जाए, फिर वो आके देखेगा, अरे हाँ अच्छा लग रहा है आपका मंदिर भी बढ़िया है, ठीक है अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है फेवरेबल हो जाता है। नहीं तो सिटी मंदिर में लोग आते हैं, आधा घंटा रुकेंगे, फटाफट गोविंदा में खाएंगे, निकल जाएंगे, डर लगता है उनको ज़्यादा समय रहने के लिए, क्योंकि लोग भी देख लेंगे हमको, यहाँ पे अपने समाज के लोग देख लिए कि अरे इस्कॉन मंदिर में क्या कर रहे हैं तुम करके, तो इसलिए ज़्यादा समय बिताने डरते हैं। यहाँ पे आदमी आता है 48 आवर्स रह के जाता है, मतलब सिटी में आपको लगभग सोचो कितना साल लगेगा उसके साथ 48 आवर्स बिताने का, है कि नहीं। तो एक साथ व्यक्ति समय देकर यहां आते हैं और ये बनाया गया है, दिस इज प्योरली अ प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द हार्ट। कोई भी दूसरे किसी मंदिर से ये भिन्न नहीं है, इसका मूल उद्देश्य ध्येय है ट्रांसफॉर्मिंग हार्ट, हृदय का परिवर्तन, इसके लिए ही बना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने राजबिहारी मंदिर में उस समय गेस्ट हाउस बनाया, मायापुर में गेस्ट हाउस बनाया, वृंदावन में गेस्ट हाउस बनाया, तो वो एक फर्स्ट लेवल था। सेम गेस्ट हाउस कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है और कुछ अंतर नहीं है, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को लेके कंफ्यूज होने की और भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हर मंदिर में विग्रह हैं, गोविंदाज रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउस है, यहाँ पर भी वही है, थोड़े एक्टिविटीज अधिक है और कुछ नहीं, लेकिन उद्देश्य लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत करना किस तरह वो परिवर्तित हो सके। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं नए नए, ये सभी महामंत्र का जप करते हुए अच्छे प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, और जब तक डिवोटीज के संपर्क में लोग नहीं आएंगे, हृदय कैसे परिवर्तन होगा। तो इसलिए आप सभी का इस प्रोजेक्ट में जुड़ना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल आप अपने अपने सब्जेक्ट एरियाज में क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, लेकिन साथ साथ आप लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज भी हो, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो इसलिए हम लोग सभी ऐसे दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब हर क्षेत्र के एक्सपर्ट जो डिवोटीज यहाँ ज्वाइन करें। तो इसलिए कई साल यहाँ पर हम लोग में से कई लोगों ने बहुत सारी दूसरी सेवाएं करके चौकीदारी दी है कि काम चलता रहे जब तक कोई एक्सपर्ट लोग ना आ जाए उस क्षेत्र में, और अब भगवान ऐसे ऐसे लोगों को भेज रहे हैं। आशा है यहाँ पर आप लोग सभी रहकर अपने आध्यात्मिक, पारिवारिक और मिशन से संबंधित सभी अभिलाषाओं की पूर्ति कर पाओगे, और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा, श्रीपाद राधानाथ महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर, आपके परिवारों पर बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं आज के कथा को यहीं विराम देता हूं, और फिर आप सभी जो नए गोवर्धन इको विलेज से जुड़े हो, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो जो भी आज प्रथम इंडक्शन प्रोग्राम में जो भी भाग लेने वाले, तो अभी बाहर नीचे विंगर खड़ा है, तो उसमें बैठ जाइए और सीधा योगा स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ पर अपना अगला कार्यक्रम चालू होगा। और बाकी जो भी भक्त लोग हैं, जो पुराने भक्त जो कई सालों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इंडक्शन प्रोग्राम होने वाला है। तो ये पहला है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसके फीडबैक से हम फ्यूचर में हर एक ऐसे चार चार परिवारों को लेकर सबका इंडक्शन प्रोग्राम कराएंगे। हरे कृष्णा। योगा स्टूडियो, नो नो, योगा स्टूडियो गौशाला के ऊपर है, गाड़ी में जाके बैठ जाइए।